ओम शांति। आज का जैसे टॉपिक दिया हुआ है प्रभु मिलन, वैसे हम ब्राह्मणों के लिए सारा संगम युग ही प्रभु मिलन है। कोई विशेष समय नहीं है प्रभु मिलन के लिए, चाहे अमृत वेला का समय हो, चाहे शाम का योग हो, चाहे रात्रि का योग हो, चाहे कोई भी समय हो, हर समय प्रभु मिलन ही है। लेकिन विशेष बाबा जो है साकार में आते हैं, इस सृष्टि पर आते हैं। वैसे हम बच्चे जो है बाबा के पास जाते हैं, लेकिन जब विशेष प्रभु मिलन होता है तो बाबा उस दिन नीचे आते हैं और हम बच्चे फिर बाबा से मिलते हैं। तो कई लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए, ऑलमोस्ट सभी जो है कई बार बाबा से मिल चुके होंगे। बाबा के दिन हम देखते हैं कि 1 बजे से ही जो है दरवाजे के बाहर भीड़ लगनी शुरू हो जाती है, और जैसे ही 2 बजे गेट खुलता है, पहले इंडियंस के लिए खुलता है, पीछे के गेट खुलते हैं 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, तो हम देखते हैं कि लोग कैसे दौड़ दौड़ के अच्छी सीट लेने की कोशिश करते हैं, भाग भाग कर आते हैं। तो जैसे आज का टॉपिक दिया हुआ है प्रभु मिलन, रेडी स्टेडी गो। तो ये टॉपिक सुनकर मुझे उस घटना, मतलब उस समय की याद आई कि कैसे बाबा के दिन लोग भाग भाग कर आगे बैठने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हम सबसे आगे पहुंचे। तो जैसे बताया संगम युग सारा ही प्रभु मिलन है, तो हमेशा हम रोज ही प्रभु से मिलन मनाते ही हैं। तो इस दिन में ऐसा क्या खास होता है? इस दिन जो है जब बाबा आते हैं, जैसे कल बाबा आने वाले शाम को है ना, हम ऑलमोस्ट 38-39 आवर्स के बाद में बाबा से मिलेंगे डायमंड हॉल में। तो इस दिन क्या खास होता है? ऐसे खीर बनती है। अच्छा, संगम युग में भी खास दिन है ना, जिस दिन हम बाबा की शक्तियों को यहाँ पर हॉल में अनुभव कर सकते हैं। बाकी के समय हमें बाबा की शक्तियां अनुभव करने के लिए परमधाम में जाना पड़ता है या सूक्ष्म वतन में आना पड़ता है। लेकिन जैसे ही बाबा डायमंड हॉल में आते हैं, दादी की आंखें खुलती है, उसी समय सारा एटमॉस्फेयर जो है, अगर आप फील करेंगे तो सारा एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाता है। जो एनर्जी लेवल जो है एकदम ही चेंज हो जाता है। हर एक के चेहरे जो है अपने आप खुशी में आ जाते हैं। कोई कहां पर भी बैठा हो, लेकिन उस समय हर एक की जो स्थिति है एकदम अलग हो जाती है। तो ये प्रभु मिलन की जो है खास कुछ बातें हैं कि हम बाबा के पावर्स को जो है, उनकी शक्तियों को साकार में इस सृष्टि पर अनुभव कर सकते हैं। हम हमेशा आते हैं बाबा से मिलने के लिए। जैसे कोई भी काम हम हमेशा करते हैं, तो काम हमेशा कर करके क्या हो जाता है? प्रैक्टिस हो जाती है ना। प्रैक्टिस के साथ और क्या हो जाता है? अभ्यास। प्रैक्टिस अभ्यास एक ही बात है, और नेचुरल हो जाते हैं, वो भी एक ही है, रूटीन जैसे हो जाते हैं। फिर हमको उसमें मजा नहीं आता है, नयापन चाहिए। लेकिन हमेशा वही बाबा की डेट्स आती है, हम आते हैं मिलने के लिए, टिकट बुक करते हैं, एकोमोडेशन लेते हैं, फिर साइट सीइंग के लिए आते हैं। कई लोग बाद में भी आते होंगे। बाबा के दिन विशेष हमारा लक्ष्य होता है कि अच्छा अनुभव करें, और फिर बाबा आते हैं, हम बाबा से मिलते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर 1-2 दिन के बाद में अपने अपने सेवा स्थान पर जाते हैं, और फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि बहुत समय से मिल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन पहले जैसा मजा नहीं आ रहा है। तो मजा क्यों नहीं आता है? परिवर्तन नहीं हुआ, और नशा कम हो जाता है। नशा क्यों कम हो जाता है? अलबेले हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें है कि हम जो है दोबारा सेम टू सेम, जैसे कोई भी चीज होती है हम हमेशा करते हैं, तो रूटीन में जब कोई भी चीज आ जाती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। जैसे हम यहाँ देखते हैं कई बार, मतलब मधुबन वाले जो होते हैं, बाहर के भाई बहने यहाँ पर आते हैं, या कोई यहाँ से बाहर जाते हैं, तो उन्हें बहुत लोग आते हैं मिलने के लिए, खास उनकी जो मतलब मेहमान नवाजी होती है, और लोगों को काफी उमंग उत्साह होता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति वहां का ही हो तो उसे मिलने में हमें उतना मजा आता है? नहीं आता ना, क्योंकि आदत हो जाती है। तो रोज का ही घर की ना, घर की मुर्गी दाल बराबर बोलते हैं ना। तो वैसी स्टेज हो जाती है हमारी, ये रोज रोज मिल ही रहे, सब वैसे के वैसे ही चल रहा है, हमेशा इतने समय से बाबा से मिल ही रहे। कई लोग यहाँ बैठे हुए बहुत कम होंगे जिन्होंने शायद हिस्ट्री हॉल या मेडिटेशन हॉल में बाबा से मिले होंगे, लेकिन कई लोग जो है ओम शांति भवन में मिले होंगे, अब जो है डायमंड हॉल में मिलते हैं, तो सेम टू सेम रूटीन हो जाता है। तो उसमें मजा नहीं आता है, अनुभव नहीं होता है। तो अनुभव कैसे करें फिर, अनुभव कैसे किया जाता है, प्रिपरेशन और अनुभव कैसे करें। अगर हम किसी के अनुभव के क्लासेस सुनते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, हमको केवल प्रेरणा मिलती है ना, इंस्पिरेशन मिलता है, हमारा हिम्मत बढ़ता है कि उन्होंने भी ऐसा किया तो हम भी ऐसा करें। लेकिन अनुभव करने के लिए खुद की मेहनत करनी पड़ती है, खुद पे ध्यान देना पड़ता है, उतनी साधना करनी पड़ती है। केवल अनुभव सुन के ही हम जो है महान नहीं बन सकते या हम बड़े नहीं बन सकते। अगर अनुभव सुन के ही केवल परिवर्तन हो जाता तो इस संसार में आज हर कोई महावीर बन गया होता, हर कोई बुद्ध बन गया होता, हर कोई ब्रह्मा बाबा बन गया होता। तो अनुभव सुनकर कुछ होता नहीं है, उसके पर मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत कौन करेगा, खुद को ही करना पड़ेगा। जिसको अनुभव करना है उसी को मेहनत करना पड़ेगा। तो फिर वही रूटीन हो गया, वही बाबा से आ रहे हैं, वही मिल रहे हैं, फिर यहाँ पे भी कमी कमजोरी देखना शुरू कर देते हैं। पिछले बार आए थे बाबा के समय ये फैसिलिटी थी, अब ये फैसिलिटी नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है। तो वो सब चीजें क्यों होती है, क्योंकि हमारा लक्ष्य नहीं है कुछ अनुभव करने का। अगर हमारा लक्ष्य हो कि हमें कुछ अनुभव करना है तो हमें जरूर बाबा अनुभव कराएगा। तो अनुभव करने के लिए खुद पर अटेंशन देना पड़ेगा। बाबा हमेशा कहते हैं कि आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे बुला लो, बाबा आओ मदद करो। बाबा बंधा हुआ है मदद करने के लिए। हम बाबा को बोल दे कि बाबा मुझे अनुभव करना है तो बाबा अनुभव कराएगा, कहीं भी कराएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ज्ञान योग छोड़ दो, साधना करना पड़ेगा। ज्ञान योग पे विशेष अटेंशन देना पड़ेगा। बाबा को बता के आप फ्री हो जाओ और उसके बाद में जो है बाबा आपको मदद करेगा। तो जैसे मैं बता रहा था कि नॉर्मल रूटीन हो जाता है, तो इस रूटीन को जो है हमें चेंज करना है। तो रूटीन को चेंज कैसे करेंगे, अटेंशन से, पुरुषार्थ करने से रूटीन जो है चेंज हो जाते हैं। जैसे एक बार शिष्य होता है और उसका गुरु होता है, तो शिष्य और गुरु को पूछता है कि परमात्मा से कैसे मिला जा सकता है, भगवान से कैसे मिले, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो जो गुरु है और शिष्य उस समय गार्डनिंग का काम कर रहे होते हैं, तो गुरु कहता है वो एक जगह से पौधे निकालकर दूसरे जगह पे लगा रहे होते हैं। तो गुरु जो है वो कहता है कि हम जो कर रहे हैं भगवान से मिलने के लिए भी हमें यही करना है। माना बुद्धि जो है एक जगह से निकालकर दूसरी जगह लगानी है तो हम कुछ अनुभव कर सकेंगे। हम बैठे तो डायमंड हॉल में हैं, लेकिन बुद्धि जो है हमारी दूसरी जगह घूम रही है, तो उससे कुछ अनुभव होगा, नहीं होगा, है ना। हम कहते तो हैं भक्ति मार्ग में भगवान को ढूंढते आए, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि हमने बाबा बाबा कह के शब्द जो है नॉर्मल कर दिया, एकदम कुछ उसकी वैल्यू नहीं रही है। अगर हम वही कहें कि हम भगवान से मिल रहे हैं तो उसकी अलग फीलिंग आती है ना, क्योंकि शब्दों में जो है ताकत होती है। भगवान कहे और एक बाबा कहे, इतना अंतर नहीं लगता। बाबा के बच्चों के लिए तो ठीक है, नॉर्मल शब्द है, बाबा 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 कहते हैं, लेकिन वही अगर हम भगवान कहें कि हम भगवान से मिलने वाले हैं या भगवान से मिलने जा रहे हैं, तो कितना नशा चढ़ जाता है कि भगवान से मिलने जा रहे हैं। जिसे इतने जन्मों से ढूंढा, जिसे इतने जन्मों से पुकारा, आज वो हमसे मिलने के लिए आ रहा है। तो भगवान से मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर, हर कोई मिलते ही है। जैसे कहा ना बाबा के दिन है, कल बाबा आने वाले हैं, तो उसके लिए जैसे कहा कि टॉपिक दिया हुआ है रेडी स्टडी गो, तो रेडी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय। और जैसे हम देखते हैं कोई क्रिकेट मैच वगैरह होता है या कोई मतलब ये होता है स्पोर्ट्स वगैरह कुछ होता है या कहीं पे बड़ा प्रोग्राम होता है, तो लोग उसकी जो है पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। तो जब बाबा आने वाले हैं तो एटलीस्ट कम से कम 4-5 दिन पहले से ही उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। 4-5 दिन नहीं हो सकता तो एटलीस्ट 1-2 दिन पहले से ही उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अपनी अवस्था को ऐसा बनाना चाहिए कि हम कुछ अनुभव कर सकें। बाबा के दिन आप पहले ही सवेरे बाबा को बता सकते हैं या बाबा के 1 दिन पहले रात को कि कल हमें ये अनुभव करना है, और उसके बाद अपना ज्ञान योग जो है उसी प्रकार से हमें चालू करना पड़ेगा। बाबा के दिन जब हम मिलते हैं बाबा से डायमंड हॉल में, तो कोई ना कोई प्रतिज्ञा करें या पहले से सोच कर आए कि ये कमी कमजोरी जो है इस समय इस बार हम बाबा को देकर जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं। और कोई एक अच्छी बात जो है, कोई एक धारणा की बात जो हमारे में कमी है, उस कमी को छोड़कर कोई एक दूसरी बात बाबा से लेकर जाए। और जब अगली बार आए हम मधुबन में 2-4 मास 6 मास या शायद 1 साल के बाद में सीधे बाबा मिलन में, तो बाबा को उसका रिपोर्ट दें बाबा को सब कुछ याद रहता है, ऐसा नहीं कि बाबा कहता है कि मैं 15 दिन के बाद होमवर्क पूछूंगा और बाबा नहीं पूछता तो बाबा भूल जाता है। बाबा को हर चीज याद रहती है, कौन सा बच्चा कहाँ है, इस समय क्या कर रहा है, बाबा को हर सब कुछ पता है। इसलिए बाबा को जानी जाननहार कहते हैं, लेकिन बाबा कहता है कि मैं जानी जाननहार नहीं हूँ, लेकिन बाबा को सब कुछ पता होता है। तो हम जो भी हमारी कमी कमजोरी छोड़कर जा रहे हैं बाबा के पास, उस कमी कमजोरी को निकालने के लिए फिर पुरुषार्थ करें, घर पर जाके या जहां पर भी हम जा रहे हैं, चाहे मधुबन में हो कहीं पर भी हो, विशेष उस पर रोज अटेंशन दें कि हमने बाबा के दिन ये प्रतिज्ञा किया था और अभी जो है हमें इस कमजोरी को निकालना है, तो बाबा फिर हमें मदद करेगा। तो वैसे के वैसे आ रहे हैं, मिल रहे हैं, सूरज भाई का क्लास सुन रहे हैं, अवस्था ऊपर जा रही है, बाबा आए और अवस्था ऊपर गई, फिर बाबा गए, फिर हम नीचे आए गए, सब वैसे के वैसे, कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो परिवर्तन नहीं होगा तो फिर बोरिंग हो जाएंगे, फिर वैसे के वैसे सारा चल रहा है। तो पहले जो हमें इसका प्रिपरेशन जो है, रेडी जो है, 3-4 दिन पहले से, एटलीस्ट 1-2 दिन पहले से ही करना चाहिए। तो जैसे हम कहते हैं ना, माया आ जाती है बाबा के दिन, मतलब बाबा के दिन ही हमेशा ही माया आती है। तो माया माना क्या होता है?
कमजोरी।
तो माया का बनाया एम से वो है मेंटल सिकनेस। तो हम दिमागी रूप से बीमार हो अगर हैं, दिमागी रूप से बीमार माना मन कमजोर है, व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं, अगर निगेटिव संकल्प आ रहे हैं तो हम बाबा मिलन का सुख नहीं ले सकेंगे। यही है भाई बहने, हमेशा इनको ही आगे बैठने मिलता है, यही मधुबन वाले इनको ही आगे बैठने मिलता है, हमको तो कोई चांस ही नहीं देता है, यही लोग दृष्टि लेने जाते हैं हमेशा स्टेज पर, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं कई बार सोचता हूँ कि जो लोग एकदम बाबा के आगे बैठे हुए हैं या जो सामने स्टेज पर भी दृष्टि ले रहे हैं और कोई एकदम लास्ट नंबर में बैठा है डायमंड हॉल के एकदम पीछे, तो दोनों की स्टेज में क्या फर्क होगा? कुछ नहीं। हाँ सर, मैं ना, अगर आपकी अवस्था अच्छी है तो आप लास्ट नंबर गेट पे बैठकर भी बाबा के पास स्टेज पर हैं, और अगर आपकी अवस्था अच्छी नहीं है, स्थिति ठीक नहीं है, तो आप स्टेज पर रह के भी वो अनुभव नहीं कर सकते। तो सब कुछ अपनी अवस्था के ऊपर निर्भर करता है, तो जितना हम अपनी अवस्था को अच्छा बनाएंगे उतना हम ज्यादा अनुभव कर सकेंगे। तो कोई भी जो मन की बीमारी जो है वो हमारे अंदर बाबा के दिन नहीं होनी चाहिए, 1-2 दिन पहले से ही उस बीमारी को निकालना शुरू कर देना चाहिए हमें, विशेष अटेंशन देके अपने ऊपर। तो पहला जो बताया मेंटल सिकनेस, कोई भी मन की बीमारी न हो। उसके बाद है एम ए, ए से क्या होगा? नहीं, हम निगेटिव पॉइंट सोच रहे हैं अभी, माया बोल रहे ना। आलस अलबेलापन है ना, आलस में अगर हम चले जाते हैं अलबेलेपन में, बाबा तो शाम को है कर लेंगे योग ना, उसमें क्या करके ना, हमेशा ही बाबा आता है 1-2 घंटा पहले, सूरज भाई के क्लास में जाएंगे, 5 बजे से बैठ जाएंगे और हो जाएगा, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। पहले से जैसे बताए, पहले से उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, तो आलस अलबेलेपन को निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ क्रिएटिविटी चाहिए, कुछ नयापन चाहिए, कुछ अपने अंदर उमंग उत्साह चाहिए कि मुझे इस बार ये अनुभव करना है, बाबा से ये शक्तियां लेनी है या अपनी ये कमी कमजोरी छोड़नी है। तो इस आलस अलबेलेपन को हमें निकालना पड़ेगा। उसके बाद है वाय, वाय से क्या होगा? याद नहीं, हम निगेटिव पॉइंट सोच रहे हैं। वाय से है याचना, याचना माना फरियाद, मांगना। बाबा से कोई भी चीज मांगे नहीं, बाबा कहते हैं कि मैंने तुम बच्चों को सब कुछ दे दिया है, जैसे ही हम बाबा के बनते हैं बाबा ने सब कुछ हमें दे दिया है, तो मांगने की जरूरत नहीं है कि हम बाबा के सामने बैठे हैं डायमंड हॉल में और बाबा हमारे घर वालों की बुद्धि का ताला खोलो, बाबा ये करो, बाबा वो करो, तो वो सब करने की जरूरत नहीं है हमें। हमें अपनी स्थिति अच्छी बनाकर अधिकारी बनकर लेना है बाबा से, हम सब बाबा के अधिकारी बच्चे हैं, तो अधिकारी बनकर जितना हम अपने आप पर अटेंशन देंगे अपने आप बाबा से सारी शक्तियां जो है हमारे अंदर आती जाएंगी। याद जैसे बाबा कहते हैं, जहां पे याद है वहां फरियाद नहीं है, और जहां फरियाद है वहां पे याद नहीं है। तो ये जो सब चीज जो है हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। और क्या होगा लास्ट का? ए से है अटैचमेंट। किसी भी प्रकार का अटैचमेंट नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो। अगर किसी भी प्रकार का अटैचमेंट है तो हम बाबा से वो अनुभव नहीं कर सकेंगे। हमारा ये यहाँ बैठा हुआ है, वो कहाँ गया, इसके साथ में आए थे, उसको ढूंढ, बुद्धि उसी को ढूंढने में लगी है, उसको सीट मिली है कि नहीं मिली है, उसको फोन करेंगे फिर। और सबसे बड़ा जो अटैचमेंट आज के डेट में देखा जाता है वो है मोबाइल फोन। अभी भी मैंने हिस्ट्री हॉल में देखा 3:30 बजे किसी का गीत बज रहा है, जबकि वहां पे भी गीत बज रहा है ऑलरेडी, अमृत वेले का गीत 3:30 का गीत बज रहा है, फिर भी उनका गीत बज ही रहा है, 4 बजे भी गीत बज रहा है, फिर भी गीत बज रहा है। तो बाबा के दिन भी ऐसा ही होता है, वहां पे भी ट्रैफिक कंट्रोल बजता ही रहता है, फिर फोन ढूंढेंगे, ये बैग खोल वो बैग खोल, ये जिप खोल वो जिप खोल, फिर फोन मिल भी जाएगा तो बंद करना कैसे वो भी नहीं पता होता कई लोगों को। तो किसी भी चीज का जो है अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, अगर अटैचमेंट है हमको तो हमारी बुद्धि वहीं पर जाएगी, फिर हम अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो पूरी तरह से जैसे बताया ना गुरु जो है शिष्य को क्या कहता है, जैसे हम पौधे एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह लगा रहे हैं, तो हमारी बुद्धि को भी सब जगह से फ्री करके उसी समय हम अगर डायमंड हॉल में बैठे हैं बाबा के सामने, तो ही हम कुछ अनुभव कर सकेंगे, जो कुछ अनुभव नहीं कर सकेंगे। और दूसरी बात जो हम कई बार देखते हैं कि भाई बहने आते हैं मधुबन में, तो उनका विशेष लक्ष्य होता है कि अमृत वेले जो है हम बाबा के दिन थोड़ा जल्दी उठे। जैसे नॉर्मली अगर कोई 3 बजे उठता है तो कोशिश करते हैं बाबा के दिन 2 बजे उठ जाए, 2:30 बजे उठ जाए, कोई 3:30 बजे उठने वाला होता है तो सोचता है 3 बजे उठे, फिर उसके बाद अमृत वाला योग करेंगे, फिर ये क्लास वो क्लास, दिन की रेस्ट हो रही है नहीं हो रही है, फिर डायमंड हॉल में भी यही सोचते हैं कि पहले जाकर आगे बढ़ जाए, अच्छी सीट ले ले। और फिर बैठने के बाद क्या होता है, सूरज भाई का क्लास होता है तब तक थोड़ा ठीक होता है, उसके बाद में जब गीत बजते हैं बाबा नीचे आते हैं और बच्चे बाबा की जगह ऊपर चले जाते हैं। परमधाम खाली नहीं छोड़ना चाहिए ना, बाबा हमेशा कहते हैं, तो बच्चे वहां चले जाते हैं बाबा की जगह, तो हम क्या अनुभव कर सकेंगे। अच्छे योग के लिए अच्छी रेस्ट का अच्छे नींद का भी होना बहुत जरूरी है। कोई जरूरी नहीं कि आप 4 घंटा ही योग करो या 3 घंटा योग करो, आप 1 घंटा योग करो लेकिन क्वालिटी वाला योग करो, आप मन बुद्धि जो है पूरी तरह से वहीं पे एकाग्र हो। अगर मन बुद्धि यहां भटक रही है तो उस योग का कुछ फायदा नहीं है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप 3 बजे ही उठो या 2 बजे ही उठो, जो आपका नॉर्मल रूटीन है। यहां तो बाबा मिलन के दिन आते तो ठीक होता है, लेकिन जैसे अगर हम लौकिक में देखते हैं कोई अगर जॉब वगैरह करने वाले हैं तो उनके लिए इतना ईजी नहीं है फिर, क्योंकि उन्हें दिन में जो है रेस्ट मिलती है नहीं मिलती है, हर एक का रूटीन जो है हर एक का स्केड्यूल अलग होता है, तो उसके हिसाब से हमें अपने आप को चेक करना है। लेकिन मन बुद्धि में ये अटेंशन जरूर रखना है कि हमें आज बाबा आने वाले हैं तो कुछ अनुभव जरूर करना है बाबा से, देखा ना रेडी स्टेडी। तो स्टेडी किस दिन बनना है हमें, बाबा के दिन। अपने आप को पूरी तरह स्थिर रखना है, अपने मन बुद्धि को यहां वहां पे भटकने नहीं देना है। अगर मन बुद्धि यहां वहां भटकेगी तो जैसे बताया कोई अनुभव नहीं कर सकेंगे। जैसे प्लेयर्स होते हैं ना, जैसे मैंने बताया स्पोर्ट्स का एग्जांपल दिया, तो जिस दिन उनका फाइनल मैच होता है या जिस दिन उनका मैच होता है तो उस दिन क्या करते हैं, आराम करते हैं। उस दिन वो ज्यादा वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं, वो उस दिन अपने आप को हल्का रखते हैं, वो किसी भी प्रकार से फ्री हो, मतलब ज्यादा ऐसा नहीं कि ज्यादा भोजन कर ले या हैवीनेस आ जाए लेजीनेस आ जाए जिसके वजह से, अपने आप को फ्री रखना है। तो बाबा के दिन भी जैसे बताया अपनी बुद्धि को मन बुद्धि को हमें हल्का रखना है और एक्स्ट्रा ज्ञान योग की तरफ अटेंशन देना है हमें, ज्यादा उस दिन ज्ञान योग की तरफ अभ्यास करना है तो हम कुछ अनुभव कर सकेंगे। नॉर्मल तो हम कर ही रहे, ज्ञान योग तो रोज करते ही, लेकिन बाबा के दिन कुछ अनुभव करना है तो ज्यादा ज्ञान योग करना पड़ेगा ना। अगर केवल बाबा को बता दिया बाबा ये अनुभव करना है हमें और ज्ञान योग की तरफ ध्यान नहीं दिया, ये नॉर्मल जैसे चल रहा है वही चल रहा है, तो कुछ अनुभव होने वाला नहीं है, तो एक्स्ट्रा ज्ञान योग करना पड़ेगा उस दिन। और क्या करना पड़ेगा, मौन का ना, मौन का अभ्यास करना पड़ेगा जितना हम रह सकते हैं, जितना पॉसिबल हो। कई लोगों की जैसे देखते हैं कि सेवा ही ऐसी होती है कि उनके लिए कभी मौन रखना पॉसिबल नहीं है ना, तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जितना अपने आप पर हम कंट्रोल कर सके, व्यर्थ की बातों में ना जाए। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि अगर कोई ज्यादा बिजी होता है तो उसके पास अगर कोई आता है तो देखेगा कि ये बिजी है तो उस पर उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे ना। तो हमें भी जो है अपने आप को बिजी रखना है उस दिन ज्ञान योग में, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जो काम की चीजें हैं वो छोड़ देवे, या कुछ सेवा हमको दिया है तो हम उस दिन सेवा छोड़ दें, उस दिन कहे कि नहीं हमको केवल ज्ञान योग ही करना है, तो केवल ज्ञान योग करके भी नहीं होगा। अपने आपके जो हमारी सेवा दी हुई है वो सेवा को देखते हुए हमें आगे इस ज्ञान योग को आगे बढ़ाना है। तो जैसे बताया एक होता है माया और दूसरा है बाबा के नजदीक जाना, नियर। तो बाबा के नजदीक कैसे जाएंगे, एन से है न्यारापन, जैसे बताया ना, अपने मन बुद्धि को सबसे जो है डिटैच रखना है, न्यारा रखना है हर चीज से, चाहे स्थूल रूप से हो चाहे सूक्ष्म रूप से। कोई अगर ऐसा काम हो, कोई ऐसी सेवा हो जो उस दिन अर्जेंट नहीं हो बाबा के दिन, तो उस काम को अगर वो ज्यादा आपका एनर्जी लेने वाली है, ज्यादा आपका मन बुद्धि उसमें जाने वाला है, शरीर को थकाने वाली सेवा है अगर कोई, या कोई काम है ऐसे, तो बाबा के दिन नहीं करे वो, एक दो दिन के बाद में बाबा के नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास भी कई भाई बहने आते हैं बाबा के दिन, तो हम उनको कहते हैं कि आज नहीं आना, क्योंकि बाबा के दिन तो वैसे भी बिजी होते हैं, सेवा होती है, तो भी आप अगले दिन आना करके, क्योंकि पहले ऑलरेडी बुद्धि पर बहुत सारा बोझ है, ये करना है ये करना, बोझ माना भाई जो भी टास्क दिए हुए, और फिर ये भी होता है कि बाबा के दिन ये भी अनुभव करना है हमें, तो ज्ञान योग भी करना है और सेवा भी करना है, तो अपने आपको हर चीज से जो है न्यारा रखना है। उसके बाद ई से जैसे बताया एक्स्ट्रा ज्ञान योग, बाकी के दिन तो हम करते ही हैं ज्ञान योग, लेकिन एक्स्ट्रा ज्ञान योग जो है उस दिन होना चाहिए, विशेष मनन चिंतन होना चाहिए, जैसे बताया कि हमें क्या अनुभव करना है, तो उस अनुभव के हिसाब से जो है हमें हमारा मनन चिंतन चलना चाहिए, तो उस दिन जो है एक्स्ट्रा ज्ञान योग करना चाहिए। और NEA से अलर्ट, अटेंशन, जितना हम अपने आप पर अटेंशन देंगे, अगर अटेंशन नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते, टेंशन आ जाते हैं, हम भूल जाते हैं, तो भूल क्यों जाते हैं, क्योंकि अटेंशन नहीं है। जैसे हमें बचपन में सिखाया खाना खाने के बाद मुंह धुलाई करना है, तो आज हम भूल जाते हैं क्या, नहीं भूलते ना, आदत हो गई। कभी सुना है कि किसी ने कहा कि मैंने आज स्नान किया और तो बॉडी को पोछना भूल गया, मतलब टॉवल से, और ऐसे ही कपड़े पहनकर निकल गया, नहीं सुना ना, क्योंकि आदत हो गई है ना। तो अटेंशन जितना हम नेचुरल कर्म में लाएंगे वो बातों को, तो अपने आप हमारा अटेंशन उस पर रहेगा, हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके, क्योंकि नॉर्मल इसमें आ गया है ना वो, तो विशेष अटेंशन बाबा हमेशा कहता है कि विशेष अटेंशन देना है। कहीं पर भी आपकी मन बुद्धि अगर जाती है तो उस मन बुद्धि को वहां से तुरंत हटाना है हमें, अगर कोई निगेटिव आता है तो उसी समय निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना है। अगर किसी आत्मा के प्रति आपके मन में कोई निगेटिव आ रहा है, हम हॉल में पहुंचे और किसी आत्मा को देखा, हाँ इसने पिछले साल भी ऐसा ही किया था करके, तुरंत बुद्धि चलनी शुरू हो जाएगी, तो उसी समय उस आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखे कि नहीं इसका भला हो, इसका कल्याण हो, बाबा का बच्चा हो, है ना। जो भी है निगेटिव को तुरंत पॉजिटिव में चेंज करे, अटेंशन देना पड़ेगा हमें, विशेष अटेंशन देना पड़ेगा, तो कुछ अनुभव होगा। और लास्ट का है आर, NEAR, आर से लॉयल्टी और रिलेशन और रियलिटी, कि हमें जो वास्तविकता को देखना पड़ेगा कि हम इस समय कहां बैठे हुए और क्या हो रहा है वहां पर। बाबा आए और बाबा का आवाज चेंज हो गया, दादी का आवाज आ रहा है और किसी का आवाज आ रहा है, तो कंफ्यूज होते हैं और मन बुद्धि भटकनी शुरू हो जाती है। हमें रियलिटी को देखना है कि समय कौन सा चल रहा है। ऑलरेडी 80 ईयर्स हो चुके हैं, अगर हम पुराने होने के बाद भी अगर हमारी मन बुद्धि भटकती है तो उसको क्या कहेंगे फिर। कहीं पर मैंने एक वाक्य पढ़ा था कि अगर भगवान को पाने के बाद भी आपका मन भटकता है तो आपकी साधना पर लोग हंसेंगे। सब कुछ मिलने के बाद भी अगर हमारा मन भटक रहा है, जिसको ढूंढ रहे थे वही मिल गया, हम वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि समय कौन सा चल रहा है। अगर कोई बहुत अच्छी गाड़ी हो और गाड़ी का मेंटेनेंस नहीं कराया जाए ठीक से, गाड़ी जो है पूरी भंगार हो जाए, खराब हो जाए पूरी, और जो है शुमाकर लेवी को दे दी जाए वो गाड़ी चलाने के लिए, दुनिया का नंबर वन फॉर्मूला रेसर है, अभी शायद नहीं है, मतलब कोई दूसरा है उसकी जगह पे, उसको दे दी जाए गाड़ी चलाने के लिए कि ये रेसिंग है, आपको ये गाड़ी चलानी है और आपको जीतना ही है, तो क्या जीतेगा वो, गाड़ी का ब्रेक काम नहीं कर रहा है, पेट्रोल है या नहीं पता नहीं, नहीं टाइम ही नहीं ना ठीक कराने के लिए, आपने बुलाकर उसको दे दिया भैया गाड़ी है और अभी 5 मिनट के बाद रेसिंग होने वाली है, आपको जीतना है, तो जीतेगा वो, नहीं जीतेगा ना। तो हमें रियलिटी को स्वीकार करना है कि इस समय कौन सा समय चल रहा है, हम डायमंड हॉल में बैठे हैं तो हमारी बुद्धि यहां वहां क्यों भटक रही है, घर पर हमारी बुद्धि क्यों चली गई है। अगर हम रियलिटी में नहीं रहेंगे, वास्तविकता को स्वीकार नहीं करेंगे, तो फिर हम कुछ अनुभव नहीं कर सकेंगे, एक जगह बैठकर भी हम दूसरी जगह हमारी मन बुद्धि भागती जाएगी। तो बाबा के लिए जैसे बताया प्रभु मिलन, हम ब्राह्मणों के लिए रोज ही प्रभु मिलन है, तो अगर हम विशेष अटेंशन देंगे अपने ऊपर तो हम कुछ अनुभव कर सकेंगे। तो सवेरे से हमारा रूटीन ही ऐसा होना चाहिए कि जितना हो सके ज्ञानियों पर विशेष ध्यान दें, उसके बाद हम जब हॉल में जाते हैं तो अपने समय के हिसाब से जब भी जाते हैं, जिसको जैसा समय है। वैसे तो कल संडे है, तो मोस्टली जो होता है लोगों को छुट्टी होती है, बाहर वालों को, मधुबन में तो कोई छुट्टी नहीं होती है। तो अपने हिसाब से हम समय पर जाए और कुछ कोशिश करें अनुभव करने की। सूरज भाई का क्लास होता है, तो सूरज भाई के क्लास में भी बहुत सारी बातें भाई साहब बताते हैं उसमें, तो उसके द्वारा भी हम कुछ नवीनता ला सकते हैं अपने योग में। उसके बाद जो 12 गीत बजते हैं, 12-13 गीत जो बजते हैं सूरज भाई के क्लास के बाद में, उसके बाद डॉक्टर हिना ने बहुत अच्छा क्लास किया है एक बार, तो उसके समय भी जो गीत बजते हैं, तो अलग अलग गीतों के समय भी हम अलग अलग तरह से अलग सामान लेकर अभ्यास कर सकते हैं। जैसे लौकिक में हम किसी से मिलने जाते हैं तो कैसे जाते हैं? तैयार होके। कैसे तैयार होके जाते हैं? सरधज के माना, सरधज के माना क्या? तैयार होके माना, जिससे मिलने जाते हैं उस प्रकार से बन के जाते हैं ना। अगर कोई हम ऑफिशियल मीटिंग में जा रहे हैं, वहां सबको हर कोई सूट बूट कोट टाई पहनकर आने वाला होगा, तो हम भी क्या सोचेंगे? कोट अच्छा सूट तो कोट पहनकर जाए वहां पे, है ना। जिस प्रकार का फंक्शन है उस प्रकार से हम जाते हैं। तो जब हम बाबा से मिलने जाते हैं तो बाबा किस प्रकार से आता है? बाबा की स्टेज क्या होती है? ऊंची स्टेज, अशरीरीपन, मतलब बॉडीलेस। तो हमें भी बाबा से जब मिलने जाना है तो हमारी भी ड्रेस वैसी होनी चाहिए। तो कौन सी ड्रेस होनी चाहिए? चमकीली ड्रेस, फरिश्ता की ड्रेस। जितना अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे उतनी हमारी ड्रेस जो है अच्छी होती जाएगी। जैसे हम वहां पे जाते हैं लौकिक में, तो देखते हैं कि ड्रेस खराब तो नहीं है, कहीं कोई दाग तो नहीं लगा हुआ ड्रेस में, ठीक से है। नया ड्रेस होने के बाद भी हम चेक करते हैं कि भाई कई बार नई ड्रेस पे भी ऐसा होता है कि कुछ दाग तो नहीं लगा है, खराब तो नहीं है कहीं पे, फटी हुई तो नहीं है कहीं पर, कहीं कहीं धागा तो नहीं निकल रहा है। तो बाबा के दिन भी हमें यही देखना है कि हम कितना फरिश्तेपन का अभ्यास करते हैं, कितना हमारी ड्रेस पे कोई दाग तो नहीं लगा है किसी भी प्रकार का, चाहे देह अभिमान का दाग हो, चाहे कई बार ऐसे होते हैं कि पुराने अगर कोई विकर्म होते हैं या कोई श्रीमद का उल्लंघन हुआ होता है बाबा के 2-4 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन पहले, महीना भर पहले, तो वही वही बात हमारी बुद्धि में आते रहती है। तो उन सब बातों को वहीं पे स्टॉप करना है। बाबा को एक बार बता दिया आपने और हम सब उन बातों से फ्री हो गए, तो उन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है हमें। तो हमारी ड्रेस भी वैसी होनी चाहिए। जितना हम अपने आप पर अटेंशन देंगे सवेरे से ही, जितना अलग अलग सामान का अभ्यास करेंगे, तो हमारी स्टेज वैसी बनती जाएगी और उसके बाद हमें फिर अनुभव होगा। एक कहानी है, आप लोगों ने शायद पहले भी सुनी होगी, कि एक राजा होता है और वो भगवान का बहुत बड़ा भगत होता है। तो एक दिन उसके सामने भगवान आ जाते हैं, तो बहुत खुश हो जाता है वो। तो भगवान को कहता है कि जैसे आप मुझे मिले, मेरी ये इच्छा है कि आप मेरी सारी प्रजा से भी मिलो। तो भगवान कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है करके, क्योंकि उसके लिए उतनी साधना चाहिए होती है, उतनी मेहनत करना पड़ेगा, उतनी तप चाहिए, तपस्या चाहिए। तो कहता है कि नहीं नहीं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो भगवान कहता है कि ठीक है, कल शाम को जो है अपनी सारी प्रजा को सबको लेकर उस पहाड़ी के पास आ जाना। तो राजा कहता है कि ये तो बहुत नजदीक है पहाड़ी, तो ये हम तो सवेरे ही पहुंच जाएंगे 1 घंटे में। तो भगवान कहता है नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपको शाम तक का समय है, शाम तक आ जाना। तो दूसरे दिन ही राजा सवेरे जो है ढिंडोरा पिटवाता है कि भगवान से मिलने जाना है ऐसे ऐसे, और सब लोग जो है पहुंचे। तो 1 घंटे में सब वहां पहुंच जाते हैं, प्रजा जो भी है सारे पहुंच जाते हैं, और फिर वो चलना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे आगे चलते हैं, तो थोड़ा दूर चलने के बाद में वहां अलग अलग टाइप के पकवान रखे होते हैं, भोजन बना हुआ होता है, तो कई लोग भोजन खाने में बिजी हो जाते हैं। तो राजा कहता है अरे चलो हमको भगवान से मिलना है, तो बोलते थोड़ा खा तो ले, तो पेट पूजा, बाद में भगवान से मिलने, ना भूखे पेट ना होए भजन गोपाला, वो हालत है। तो पहले भगवान से मिल लेंगे, पहले खाना खा लें अच्छे से। तो कुछ लोग वहां पे बिजी हो जाते हैं, फिर थोड़ा आगे जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े रखे होते हैं, तो कई लोग कपड़ों में बिजी हो जाते हैं, ये कपड़ा ले वो कपड़ा ले। तो वो राजा कहता है कि चलो भगवान से मिलना है, तो बोलते नहीं नहीं आगे चलेंगे, अभी शाम तक का टाइम है ना हमारे पास में, मिल लेंगे उसमें क्या करके। तो कई लोग उसमें बिजी हो जाते हैं। आगे जाते तो बहुत सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात गहने रखे होते हैं, तो कई लोग उसमें बिजी हो जाते हैं। तो अंत में ऐसा करके केवल जो है राजा ही भगवान के पास में पहुंचता है। तो भगवान पूछता है कि भाई क्या हुआ, बाकी के लोग कहाँ रह गए? सब खाने पीने में रह गए यहाँ पे। तो हमारे साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा है कि हम भगवान के तो बन गए, लेकिन बुद्धि जो हमारी खाने पीने में बिजी हो गई। कई बार कई लोगों को ऑब्जेक्शन होता है कि हाँ मधुबन में देखो हर 10-15 दिन में कुछ ना कुछ पिकनिक होती है। मैं तो कहता हूँ कि रोज पिकनिक होनी चाहिए, रोज 56 प्रकार का भोजन बनना चाहिए तो हमारी अवस्था का पता पड़ेगा कि हमारा अपने आप पर कंट्रोल कितना है। हाँ वही ना, खा खा के तंग हो गए तभी योग कर पाएंगे फिर। अगर कोई सन्यासी हो जिसे केवल दाल रोटी मिल रही हो और वो कहे कि मैंने केवल सन्यास कर लिया है तो उसे प्रॉपर सन्यास नहीं माना जाएगा, क्योंकि बुद्धि तो भटक रही है ना हमारी। तो रोज ही वो चीज मिलनी चाहिए तो हमें हमारी अवस्था का पता पड़ेगा ना कि हम कहाँ तक पहुंचे। अगर कोई खा ही नहीं रहा है और कहे कि मैंने त्याग कर दिया इन वस्तुओं का, एग्जाम्पल देते ना, कोई ऋषि जो है साधु जो है जंगल में जाकर बैठ गया और कहता है कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, तो हमें क्या मालूम पड़ेगा? जब वो लोगों के बीच में आए तो मालूम पड़े ना कि गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर हम उन चीजों के बीच में रहेंगे, बाबा हमेशा कहता है कि साधन वैभव सब आप बच्चों के लिए है, उसके बीच में रहते हुए हम जितना न्यारा रहेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा अपने आप पर कंट्रोल कितना है। हम कोई चीज खा नहीं रहे हैं ना, एक साल के बाद में एक बार बनती है अगर वो चीज, तो क्या होगा? फिर सब टूट पड़ेंगे उसके, है ना, ज्यादा खाने लगेंगे। लेकिन उस समय भी हम अपनी कंट्रोलिंग पावर चेक कर सकते हैं कि हमारी कंट्रोलिंग पावर अपने आप पर कितना है।
एक बार बनना चाहिए तो मालूम पड़ेगा अवस्था
का। नहीं नहीं, रोज बनना चाहिए। तो रोज बन बन खा खा के बोर हो जाएंगे ना फिर। वो भी कर सकते हैं, साल में एक बार बने तो भी अच्छा है, लेकिन फिर वो हो जाएगी कि हम साल में एक ही बार अपनी अवस्था को चेक कर पाएंगे। फिर रोज बने तो रोज चेक कर पाएंगे ना कि भाई कितना अटेंशन है हमारा, कितना हमने अपने आप को कंट्रोल में रखा है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपके साथ में शेयर की कि प्रभु मिलन कैसे करें। तो मैंने जैसे बताया अपने आप पर हमें अटेंशन देना है। तो बाबा मिलन के दिन जो गीत बजते हैं 12 गीत, तो वो गीत जो है आधा आधा मिनट का गीत बनाया हुआ है, 4 मिनट हम सब यहाँ बैठ के योग करेंगे। और अपने आप को चेक करेंगे। जैसे बता ना, बाबा के दिन गीत बजते हैं तो हर एक गीत जो है अलग अलग टाइप का गीत होता है। आज सवेरे कौन सा गीत बजा था अमृत वेले? तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दी। अगर हम एक केवल इसी गीत पे टिक जाए, अपने आप को सेट कर देवे, तो बहुत इजी हो जाएगा। किसी ने एक बार मुझसे कहा कि आप गीत दो, बाबा के गीत आपके मोबाइल में होंगे। तो मेरे पास जो 30-40 गीत थे मैंने दे दिए उसको। उसने कहा कि बाबा के तो इतने सारे गीत हैं, आपके पास इतने ही गीत हैं? तो मैंने कहा मेरे मोबाइल में वही गीत हैं कि जो आप सुनोगे और आपका योग सीधे लग जाएगा। तो बाबा के दिन भी जो गीत बजते हैं वो उसी प्रकार के गीत बजते हैं कि आप सुनो, उसमें टिक जाओ, तो आपको बाकी की कुछ करने की जरूरत नहीं है। गीत में सुना ना सवेरे, चलते हैं जब जमीन पर लगता है गगन में उड़ रहे हैं, कितनी अच्छी लाइन है। तो अगर सचमुच हम उसका अभ्यास करें उस समय, तो बाकी की कुछ चीजों की जरूरत ही नहीं हमें करने की, अलग अलग सामान लेकर अलग अलग बातों पे ध्यान देने की। तो ये गीत बजाएंगे अभी और हर कोई अलर्ट होकर 3-4 मिनट ही है, उसके बाद योग करेंगे। शांति।